समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों के बारे में देंगे जानकारी और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन। शगुन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो एंड टू ऑल द लिसनर्स। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ लॉट इन स्टोर, नेमली अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more, and all of this over the next 30 minutes till 5 PM. So don't go anywhere. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम इटली रवाना होंगे। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा में 1,500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक रद्द किए गए हैं। सरकार ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला।
बीजेपी लीडर पेमा खांडू स्वोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। 49 foreign workers, including 40 Indian nationals, killed in massive fire in a building in Kuwait. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reaches Gulf country to facilitate expeditious repatriation of mortal remains of Indian nationals.
और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में आकर्षी कश्यप महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में और बी सुमीत रेड्डी तथा एम सिक्की रेड्डी की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी भी अंतिम आठ में पहुंची।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So today we will talk about International Albinism Awareness Day.
आज विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एल्बिनिज्म अवेयरनेस 18 दिसंबर 2014 को 13 जून के दिन को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के मनाए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। इस दिवस को मनाने का एक अन्य कारण लोगों को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी देना भी है। लोगों को इसके शुरूआती लक्षणों के बारे में बताने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इस बीमारी की शुरुआत में ही जांच कर पाते हैं और इस बीमारी का समय से उपचार संभव हो पाता है। ये रोग शरीर में मेलानिन नाम के पिगमेंट की कमी के कारण होता है। ये पिगमेंट बालों, त्वचा और आंखों में पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी सूर्य की तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाता। वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दवाइयों के माध्यम से ही केवल इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
So Akashita, as you have already told, this day, International Albinism Awareness Day, it is observed every year on June 13 to bring about awareness among the people for the prevention of attacks and discrimination against persons with albinism and also about the rights of people with albinism. The General Assembly of United Nations adopted a resolution on 18th of December proclaiming that with effect from 2015, 13th of June will be observed as International Albinism Awareness Day, IAAD.
एल्बिनिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप शर्मा। आइए सुनते हैं क्या है इसके लक्षण और सावधानी कैसे बरतें।
एल्बिनिज्म एक जेनेटिकल कंडीशन है, प्रचलित अर्थों में इसको मैं बीमारी तो नहीं कहूंगा। इसमें जो बच्चा होता है पैदाइशी ही उसमें जो पिगमेंट हम कहते हैं, रंग जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो नहीं होता। उसकी वजह से उसके स्किन, उसके बाल, उसकी आंखों का रंग भूरा हो सकता है। इससे कोई जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको आ सकती हैं, जैसे कि उसको सनबर्न ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो पिगमेंट है वही हमारा सनस्क्रीन भी है एक तरह से। इसीलिए हमारे खुले हिस्से थोड़े डार्क होते हैं, क्योंकि बॉडी खुले हिस्सों को और ज्यादा पिगमेंट बना के खुद को जलने से बचाती है। हम वो अलग बात है कि हम समझते हैं हम जल के काले हो गए, जल नहीं गए, हम जलने से बचने के लिए खुद को काला कर लेते हैं बॉडी, तो वो ये नहीं कर सकते। तो उनको सन के बुरे प्रभाव से बचाने का, यूवी रेस के प्रभाव से बचाने का कोई तरीका नहीं होता, तो उनमें स्किन कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे बच्चों में जितना अधिक से अधिक सन प्रोटेक्शन हम दे सकें हमको देना चाहिए। सबसे प्रैक्टिकल तरीका तो यही होगा कि वो जितना हो सके दिन में कवर्ड रहें, पूरी बाहों की शर्ट पहने, कैप लगाएं। आंखों में पिगमेंट कम होने से, आंखों का रंग तो भूरा होता ही है, थोड़े बहुत विजन के इश्यूज भी आते हैं, इसकी वजह से उसको लेजी आई भी बोलते हैं, वो पलकें ज्यादा झपकते हैं, तो उनको धूप का चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है। वैसे जेनेटिक कंडीशन में कोई इलाज नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक रेयर कंडीशन है, जो जब माँ बाप दोनों में इसके जीन्स होते हैं तो बच्चों में उसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो हम उसको एक इस तरह से देखें कि एक सिचुएशन है जिसमें हमें बच्चे को मैक्सिमम हेल्प करना है उसकी स्किन के अकॉर्डिंग, ना कि कोई इलाज करना है। वही मैक्सिमम ढक के रहें, जहां ढक न सके वहां पे सनस्क्रीन लगाएं, सनस्क्रीन को 2-3 घंटे पे रिपीट करें। अदरवाइज ऐसे बच्चे नॉर्मल ही होते हैं, स्किन में भी और कुछ नहीं होता पिगमेंट कम होने के अलावा, वो भी एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं दूसरे बच्चों की तरह, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो।
ये थे डॉक्टर कुलदीप शर्मा जिन्होंने हमें एल्बिनिज्म के बारे में बताया।
So continuing talking about albinism, it is a rare non-contagious genetically inherited difference which is actually present at birth. And in almost all types of albinism, both parents must carry the gene for it to be passed on even if they do not have albinism themselves. The condition is found in both sexes regardless of ethnicity and in all the countries of the world. Albinism is caused by mutations in specific genes that are responsible for melanin production.
इस बीमारी के कारण है, जैसे ये एक अनुवांशिक रोग है, जब माता पिता दोनों के शरीर में एल्बिनिज्म के अंश होते हैं तब बच्चों को ये रोग होने की काफी संभावना होती है। एल्बिनिज्म रोग तब होता है जब शरीर भोजन को मेलेनिन में परिवर्तित नहीं कर पाता। इस रोग के लक्षण हैं त्वचा पर झाइयों की समस्या होना, त्वचा का रंग हल्का पड़ जाना, बालों का सफेद, भूरा या पीला हो जाना, भौं और पलकों का पीला हो जाना, आंखों का रंग हल्का नीला या ब्राउन हो जाना। और इसके बचाव के जो कारण हैं वो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि जन्म के समय बच्चे में इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यदि परिवार के किसी सदस्य में एल्बिनिज्म के लक्षण दिखें तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है।
जी बिल्कुल। There is no, like I was talking about melanin production, there is actually no cure for the absence of melanin, which is actually central to albinism. Now, if we talk about the numbers vary. It is estimated that in North America and Europe, one in every 17,000 to 20,000 people have some form of albinism. The condition is actually much more prevalent in sub-Saharan Africa, with estimates of one in 1,400 people being affected in Tanzania, and prevalence as high as 1 in 1,000 reported for select populations in Zimbabwe and for other specific ethnic groups in southern Africa.
शिफाली, आपको बता दें, हम श्रोताओं को बता दें कि ये जो एल्बिनिज्म है ये संक्रामक नहीं है, और एल्बिनिज्म जो है वो समान रूप से सामान्य है। एल्बिनिज्म अभी भी एक गलत समझी जाने वाली स्थिति है, अपनी अलग शक्ल सूरत के कारण उन्हें अक्सर सामाजिक और पारिवारिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंट्री, इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीज दीज लाइफ सेविंग मीन्स आर अनअवेलेबल और इनएक्सेसिबल टू देम, द लाइफ सेविंग मीन्स एंड द अदर अमेनिटीज। सो कॉन्सिक्वेंटली इन द रियल्म ऑफ डेवलपमेंट मेजर्स, पर्सन्स विद एल्बिनिज्म हैव बीन एंड are among those which are left furthest behind. Therefore, they ought to be targeted for human rights interventions in the manner envisioned by the Sustainable Development Goals.
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो आज के दिन आइए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी एल्बिनिज्म बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। गुजरात के कच्छ की धरती ने बहुत से ऐसी चीजें संग्रहित की हैं जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकने वाले इस क्षेत्र में यहां की धरती पर जीवन भी अद्भुत है, जिसमें कच्छ नस्ल का खराई ऊंट कई मायनों में खास है, क्योंकि ये ऊंट रेगिस्तान में नहीं बल्कि पानी में जाकर अपना भोजन लेता है। ये पानी में आसानी से तैर सकता है। कच्छ जिले में लगभग 12,000 ऊंट हैं। चूंकि वर्ष 2024 को यूनेस्को द्वारा विश्व ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए ऊंट की एक प्रजाति खराई ऊंट के बारे में जानना दिलचस्प होगा। खराई ऊंट के बारे में आइए विशेष जानकारी लेते हैं हमारे भुज के संवाददाता भरत देवमणि से।
विश्व में कुल 6 प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, जिनमें से कच्छ में ऊंटों की 2 नस्लें पाई जाती हैं, कच्छी और खराई ऊंट। खराई ऊंट की खासियत की बात करें तो खराई ऊंट भारत के कच्छ की खाड़ी और कंबात की खाड़ी में ही पाया जाता है। खराई ऊंट समुद्र की खाड़ी में तैर सकता है। समुद्र में तैरने की प्राकृतिक क्षमता केवल खराई ऊंट में होती है। समुद्री खाड़ी में पाए जाने वाले चेरिया पौधे की पत्तियां खारे पानी के ऊंट का मुख्य भोजन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खराई ऊंटों को एक अलग नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। खराई देश की 9वीं ऊंट संतान है। सहजीवन संस्था के 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में खराई ऊंटों की आबादी 3,664 है। हालांकि अकेले कच्छ में इन खराई ऊंटों की संख्या 2,000 से अधिक है। ऊंटों और पशुधन के विकास के लिए मालवाहकों के साथ काम कर चुके महेंद्र भानाणी ने खराई ऊंट के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही।
मैंने 10 साल ऊंट पालकों के साथ विभिन्न मुद्दों पे काम किया है, जिसमें उनका ग्रेजिंग एसोसिएशन, उनकी आजीविका में कैसा बढ़ाव किया जाए, उस मुद्दों को समझकर आगे बढ़कर काम किया है। जिसमें कच्छ में मुख्य 2 प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, जिसमें कच्छी और खाराई नस्ल की 2 ऊंटे हैं, जिसमें खासकर खाराई ऊंट है वो बहुत ही कम है, जिसको 2015 में भारत की 9वीं नस्ल के रूप में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे कच्छ में कैमल पे बहुत काम हुआ और मुख्यतः दूध उनकी आजीविका में बहुत ही बढ़ावा हुआ और आज कच्छ के अंदर प्रतिदिन 5,000 लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। तो जैसे ऊंट की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊंट पालकों की आजीविका में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
परिक्रमा के लिए परेश मारू के साथ मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी भुज।
सो नाउ ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम गुजरात टू मिजोरम। Mizoram is a small state situated in the northeastern corner of India, as we already know, but with the talent of the youth force, it is making headlines in the national football landscape with so many Mizo players in the Indian Super League. The spirit of sportsmanship is growing and the state is now looking towards creating world-class athletes. We have more from our correspondent.
With the theme Vision 2036, for the first time in the state's history, the Mizoram Sports Conclave is being held from today. The aim of the conclave is to haunt and nurture young talents so that more athletes and players from Mizoram could participate in the forthcoming Olympics 2036. The conclave is for 2 days where there will be threadbare discussion on building more players from Mizoram. Sports Minister Lalhing Lovamar said, Mizoram Sports Conclave would lay the foundation for building a strong sports contingent from Mizoram. Commenting on the government's initiative, a visibly happy sportsperson told Akashvani News that the initiative of the government would result in promotion of holistic sports culture in Mizoram. He says,
as a sports lover and a sportsman, I feel that organizing Mizoram Sports Conclave by the government is a good decision. I appreciate the government for organizing the conclave, as it will give the youth an opportunity to explore the world of sports. It is more gladdening to learn that many experts from outside are also joining this conclave. I hope and pray that many Mizo players have the opportunity to showcase their talents in Olympics in tune with the team Vision 2036.
Irene, Akashvani, Aizawl.
मराठवाड़ा संभाग में उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए औरंगाबाद में ऑरिक सिटी और जालना जिले में ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। ये कार्य अभी निर्माणाधीन है, लेकिन विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि अभी से ही यहां पर व्यवसाय की जांच पड़ताल करने लगे हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
मराठवाड़ा में जालना जिले के साथ ही और कई गांवों में मौसम्बी के बागान है। यहां की मौसम्बी का स्वाद और सुगंध के कारण इसे GI अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। इसी के चलते दक्षिण कोरियाई व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल जालना की मौसम्बी रिसर्च सेंटर को भेंट दी और मौसम्बी की पैदावार और इसी संदर्भ में और अधिक जानकारी ली। रिसर्च सेंटर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर संजय पाटिल ने इस बारे में हमें और अधिक जानकारी दी।
ये टीम ने स्वीट लाइम के बारे में बहुत कुछ पूछताछ किया। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि दक्षिण कोरिया में स्वीट लाइम इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बहुत काफी जानकारी ली। मराठवाड़ा में तकरीबन 49,000 हेक्टर पे स्वीट लाइम का एरिया है और वो टीम ने इस स्वीट लाइम के फ्रूट का जो मैनेजमेंट है उसका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और मराठवाड़ा की मिट्टी और क्लाइमेट अनुकूल होने की वजह से इस मराठवाड़ा या जालना की मौसम्बी को एक पर्टिकुलर अरोमा है, पर्टिकुलर सेंट है, उसका TSH एसिड ब्लेंड भी बहुत अच्छा है। तो इस टीम ने ये सब चीजों देखकर इनका कुछ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का स्टडी किया, फ्रूट का अवेलेबिलिटी कब है इसके बारे में भी कुछ पूछताछ किया और यह से माल दक्षिण कोरिया में ये बहुत प्रीफर किया जाता है ऐसा उनका कहना था। इसके बारे में उन्होंने हमारे रिसर्च सेंटर में आके बहुत कुछ जानकारी ली।
डॉक्टर पाटिल के अनुसार यदि सब प्रक्रिया अनुकूल रही तो वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण कोरिया में बैठा व्यक्ति सुबह के नाश्ते में जालना की मौसम्बी का जूस पी रहा होगा। परिक्रमा के लिए बाबा साहब मस्के के साथ छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
So listeners, now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened this day.
It was on the 13th of June 1943 that Netaji Subhash Chandra Bose arrived from Germany to Tokyo and declared his intention of ending British rule in the subcontinent. He aimed to attack the eastern regions of India, and to this end, Netaji went to Singapore on the 2nd of July. In October 1943, at the famous Cathay Cinema Hall in Singapore, Subhash Chandra Bose formally announced establishment of the Provisional Government of Free India. Netaji declared,
"It will be the task of the Provisional Government to launch and conduct the struggle that will bring about the expulsion of the British and their allies from the soil of India."
The Provisional Government of Free India gave a clarion call for independence and emboldened the brave freedom fighters to rise against the then British Empire with more gusto and courage. The activities of the Indian National Army under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose shook the foundation of the British Empire.
We remember Gandhian freedom fighter Narut Nath, who was martyred on the 13th of June 1930. A resident of District Surat, Gujarat, Narut Nath took part in the Dharasana Salt Satyagraha in May 1930.
During the Salt Satyagraha in 1930, when Gandhiji decided on a raid of the Dharasana salt works, he wrote to the Viceroy, Lord Irwin, and told him about his plan. Gandhiji was arrested on the 4th of May 1930 and was detained without trial near Pune.
However, the Dharasana Satyagraha went ahead as decided and planned by Gandhiji, with Abbas Tayyibji, a 76-year-old retired judge, leading the march with Kasturba Gandhi at his side. Both Abbas Tayyibji and Kasturba Gandhi were also arrested before reaching Dharasana and sentenced to 3 months imprisonment. After their arrests, the Satyagrahis continued the march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
"You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
The armed forces clubbed the Satyagrahis with steel-tipped lathis on the 22nd of May 1930. A large number of Satyagrahis were injured badly, including Narut Nath, who died of his injuries on the 13th of June 1930. We salute the great martyr.
We also remember independence activist Gunisi Singh, who took part in the First War of Independence in 1857. Initially, Gunisi Singh used to serve the English East India Company Army, but left it during the uprising of 1857 and took part in attacking the British establishments on various occasions. Singh also motivated his fellow sepoys to turn their arms on the British and overthrow their oppressive rule.
While fighting against the British, he was caught and charged with desertion and mutiny against the British authorities. Gunisi Singh was sentenced to transportation for life. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858 and died there in captivity on the 13th of June 1858. We salute the great martyr.
So listeners, now it's time for some business news updates. Talking about India's equity benchmark indices, the Sensex rose 204 points or 0.27% to close at 76,811. Nifty gained 76 points or 0.33% to settle at 23,399. Talking about the Indian global crude market, the Brent crude is trading at $81.98 per barrel, WTI crude is trading at $77.73 per barrel when reports last came in. In the global commodity exchange for 5th August 2024 contract, gold is trading at 71,589 rupees per 10 grams. Silver for 5th July 2024 contract is trading at 88,959 rupees per kg when reports last came in.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
खेल के मैदान में बहुत हलचल है अभी. आई एम गोना टॉक अबाउट बैडमिंटन फर्स्ट. इंडियाज आकर्षी कश्यप हैज एडवांस इन टू द वुमेन्स सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन इन सिडनी टुडे. शी डिफीटेड लोअर रैंक शटलर एंड होम फेवरेट काई की थ्यो 21-16, 21-13 इन द राउंड ऑफ 16. And the mixed doubles pair of B. Sumit Reddy and N. Sikki Reddy also entered the quarterfinals by defeating Australian pair of Kai Chin Teo and Teo Kai Ki in straight games.
आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने अमरीका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली. अमरीका ने पहले बल्लेबाजी कर 8 विकेट पर 110 रन बनाए. 111 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत के सूर्य कुमार यादव के शानदार अर्धशतक और शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी के बल पर भारत ने यह मैच जीत लिया. आज अन्य मुकाबले में वेस्टइंडीज ने त्रिनिदादनी न्यूजीलैंड को 13 रनों से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी. आज ही किंग्सटाउन में बांग्लादेश का सामना नीदरलैंड से होगा. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं हम विनायक पांडुरंग करमर को. आज ही पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर की. अपनी मूर्तिकला के माध्यम से उन्होंने देश विदेश में बहुत सम्मान पाया. भारत सरकार ने वर्ष 1964 में विनायक पांडुरंग करमरकर को पद्मश्री से सम्मानित किया था. नाना साहेब करमरकर के नाम से लोकप्रिय विनायक पांडुरंग करमरकर का जन्म 2 अक्टूबर 1891 को मुंबई में हुआ था. उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों के लिए जाना जाता है. अलीबाग के पास सासावनी गांव में विनायक पांडुरंग के घर पर मूर्तियों का करमरकर संग्रहालय स्थापित किया गया है.
Okay, so today on the 13th of June, it's the birthday of an American lead vocalist and guitarist, Dennis Michael Lecourier. He is the founding member of the country rock group Dr. Hook, formerly Dr. Hook and the Medicine Show. He is also a songwriter whose songs have been recorded by many famous artists, Bob Dylan, Crystal Gayle, B.J. Thomas and so on. He has also contributed his vocals to the albums of others such as Randy Travis. The name of the album is Always and Forever album in the year 1987. So let's listen to this beautiful track by him, If Not You.
Who's gonna water my plants? Who's gonna patch my pants? And who's gonna give me the chance to feel brand new? Who's gonna iron my shirts? And who's gonna kiss where it hurts? And who needs a man when he flirts the way I do?
आज ही शहादत दिवस है मेजर मनोज तलवार की, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लोहा लिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
जून 1999 में कारगिल युद्ध में जब देश के दुश्मनों ने अपने नापाक इरादों से हमला किया तो मनोज तलवार अपने साथियों के साथ शत्रुओं को करारा जवाब दे रहे थे। 13 जून को कारगिल में दुश्मनों को ढेर करने के बाद टुटक की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराने के बाद वे शहीद हो गए। मेजर मनोज तलवार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत मां के इस वीर सपूत को परिक्रमा की पूरी टीम का सलाम।
So moving on, today we are remembering John Allen Campbell. He was an American blues guitarist, singer and songwriter. So a lot of musicians whose birthday or the remembrance of those artists we are taking up today. His first group was the Texas-based electric power trio Junction. Formed in 1973 in Texas, the band consisted of John on guitar and vocals. The trio disbanded 2 years later. And at the eve of the 1980s, he spent time at the Robin Hood Studios in Tyler, Texas, wherein he created many albums. And we will be listening to this track by him. This is Devil in My Closet.
I got the devil in my closet, and the wolf is at my door. I got the devil in my closet, and the wolf is at my door. Ah, what's a man to do when you can't trust your woman no more?
आज ही पुण्यतिथि है देश के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंगकार मुद्रा राक्षस की। उनके साहित्य का अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, नाटक, इतिहास, संस्कृति और समाज शास्त्रीय क्षेत्र जैसी अनेक विधाओं में ऐतिहासिक हस्तक्षेप उनके लेखन की बड़ी पहचान है।
So today we are also celebrating, it's the birthday of Christopher Robert Evans. He's an American actor and I think most of the people would be knowing about him. He has acted in the Avengers series, Marvel Cinematic Universe, and in various Marvel Cinematic Universe films, from Captain America, the first Avenger, to Avengers Endgame. So let's listen to this very popular dialogue by him, which I think most of the people would be knowing. Avengers Assemble.
Avengers!
हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार प्रेम धवन की आज जयंती है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे। प्रेम धवन न केवल गीतकार थे वरन उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, नृत्य निर्देशन भी किया और अभिनय भी किया।
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
hindustani
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का तो आकर्षिता और शगुन को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर नमस्कार।